आज की सभा के अध्यक्ष श्री स्वामी भक्ति वेदांत नारायण प्रभुपाद जी महाराज और मुख्य अतिथि महोदय जगत सचिव श्री कृष्ण जैतन संप्रदाय के मूल आधार श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी के चरणों में बार बार नतमस्तक हूं। सभी अतिथि यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं आप सबको मालूम है मेरी हार्दिक श्रद्धा आपके प्रति है। मैं आप सभी के चरणों में अपनी भावभीनी प्रणति या अभावनी अंजलि के प्रति करती हूँ। शायद ही यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके चरणों में मैंने भागवत का अध्ययन न किया। बस यही मुझे कहना था। अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आगे बढ़ा
हरे 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 आदरणीय स्वामी जी बालक करें नगर के प्रतिष्ठित विद्वान डॉक्टर त्रिलोकनाथ जी भटवाल जी गया माल्यार्पण द्वारा महापति की ओर से आदरणीय स्वामी जी का स्वागत करें। अवसर मिला है तो बहन डॉक्टर मन गुप्ता के शोध कमल के प्रकाशन को विमोचन करने के उपलक्ष्य में प्राप्त हुआ। डॉक्टर मन गुप्ता ने अभी आप प्रस्तुत हो चुके हैं उनकी वाणी आपने सुनी और उससे भी आपको प्रतीत हुआ कि उनकी वाणी में कुछ विशेष बात है, उनके हृदय में कुछ विशेष ललक है। लेकिन मैंने जब इस कार्यक्रम के संदर्भ में संपर्क में आया जैसे कि रघुवा सिंह है वो करीब दो वर्ष को
योजना पर विचार किया। आप सभी जानते हैं यह समस्या जब से भागवत प्रकट हुई है तब से किसने भागवत कही किसके लिए कही। सुखदेव जी यहाँ बैठे हैं परीक्षित बैठे हैं। सुखदेव जी क्या है चार दिन का परीक्षित का उद्धार करना और सुखदेव जी महाराज खगोल का भूगोल का मनमंडल का ईशान कथा का आदि आदि का वर्णन कर रहे हैं। देखिए ये जो शंका उठाई जाती है ये बड़ी स्वाभाविक है। चार दिन में सुखदेव का मोक्ष होना है उधर राधा जी जो कि आला जी का शक्ति है और उनसे भी परिचित कराना है और सुखदेव जी को चरणी में मिठा जाता है। ऐसी स्थिति में भागवत प्रबंध जो बिखर गया है जिसमें गुंफन नहीं हो पाता उसका कारण क्या है। कारण कुछ नहीं है दरअसल ये भागवत का अपना लॉजिक श्रीमद् भागवत महापुराण है और महापुराण से भी बढ़कर ये प्रेममय ग्रंथ है। दस कथेगा महाभाग यदि कृष्ण कथा आप कहते जाइए महाराज यदि वो कृष्ण कथा का हाथ देते तो कोई भी कथा श्री कृष्ण कथा की ओर उन्मुख होती है और जहाँ भी श्री कृष्ण की कथा नहीं है वहाँ यही है कि श्री कृष्ण के विरुद्ध चयन करता जा रहा है। तो मैंने अपने शोध प्रबंध में इस विषय पर विशेष रूप से गौर किया है। कई युग में कृष्ण की उपासना और उसका कथा न्यास इसमें काव्य शास्त्र के यशभाजी के विद्वान अच्छी तरह जानते हैं मां समुद्र नगर युद्ध आदि का वर्णन खींचते हैं। भागवत कथा प्रवण परंपरा से प्रभावित है और यह नित्य शास्त्र है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जांच मुझे इसकी एजेंडा नहीं है। परंपरा से कही गई है एक ने सुना दूसरे ने सुना और सबसे बड़ी बात तो यह कि जहाँ भी जिज्ञासा हुई भागवत कथा कह दी गई और जिसको जिज्ञासा नहीं उसको यह स्वभाग्य नहीं मिलता। समाज पद्धति में बहुत संक्षेप में यह कथा श्री कृष्ण ने श्री ब्रह्मा को सुनाई परंतु ब्रह्मा जी को अनुभूति नहीं हुई। तभी तो कहा जाता है कि भागवत सिनेमा पढ़ने पर भी ब्रह्मा को नहीं आती। तो भगवान का जो भागवत में लीला वाचन किया गया है उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश कराया गया। पहले मैं जान तो लूँ ये इंद्रिया क्या है, पहले मैं जान तो लूँ ये संसार क्या है, तभी तो स्कूल में जाऊंगा, तभी जैसा निष्पन्ध में निरोध की बात कर देना है। निरोध से भी बढ़कर है प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम में हमें दूर दूर जाना है। राज पंचाध्याय जो बिना पूछे अनायास कह दी गई उसमें एक ही प्रश्न कहा गया क्या यह उचित है। सुखदेव जी नाराज हो गए और उसके उत्तर में उन्होंने क्या कहा यह शिष्य वेतन होगा। पर हम श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का कथा रूप में व्यक्त किया गया है और वर्णन कुछ इस प्रकार का होता है कि अन्य अवतार गौर हो जाते हैं और श्री कृष्ण एक अवतार पुरुष हो जाते हैं। एक ये चांद तरह उनका कृष्ण अस्तु भगवान है श्री कृष्ण अवतारी है और लोग उनके अंश समूह है। कथा न्यास में यदि रस भाषी के विद्वान जानना चाहें तो ऐतिहासिक प्रवृत्ति का अर्थ लिया गया है। प्रथम स्तंभ से दसम स्तंभ तक की भावना है लाल मेरे लाल की सब जगह रही समान और लाल जैसे मैं रही मैं भी हो गई। अब
इसके लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर
शेखर देवी शर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय का प्रवर्तन करने की कृपा करें।
आज दो ग्रंथों का विमोचन हुआ। पहला ग्रंथ था श्रीमद् भागवत की प्रबंध योजना, ये डॉक्टर मधुस्ता के द्वारा लिखा हुआ जो प्रबंध है, इनके निर्देशक हैं डॉक्टर जयकिशन धनिर्वा। इनका जिस समय विषय बात हुआ था उसमें मेरे अंतर्गत एक विद्यार्थी कार्य कर रहा था, रामहरि गुप्ता। जयकिशन जी ने इच्छा व्यक्त की, हम मथुरा रहते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, रामहरि गुप्ता को मुझे दे दीजिए, मधु गुप्ता को आप दे लीजिए। मैंने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, शायद डॉक्टर मधु गुप्ता को इसका पता भी नहीं होगा। ठीक है, रामहरि गुप्ता ने ये कहा कि मैं तो आपके निर्देश में रहना चाहता हूँ, मैं निर्देश में बदलना नहीं चाहता, इसलिए इसी प्रकार से कार्य हुआ। प्रसन्नता हमें इस बात की है आज जो उनका प्रमोशन हो रहा है उस पर मैं उपस्थित हूँ, और डॉक्टर मधु गुप्ता ने जो कार्य किया है अपने विषय में वो अत्यंत ही प्रसन्ननीय है। और सबसे गौरव का विषय तो यह है कि क्षेत्र ही श्रीमद् भागवत का एक अपार गूढ़ क्षेत्र है, यहाँ कितने मर्मज्ञ विद्वान निवास करते हैं, उन सभी का उन्होंने सानिध्य प्राप्त करके इस ग्रंथ को लिखा है, और उन्होंने इस महापुराण को भी एक प्रबंध काव्य के रूप में संगठित करने की चेष्टा की है, ये बड़ी प्रशंसा की चीज। दूसरा ग्रंथ का मंचन हुआ है आचार्य कैलाश चंद्र कृष्ण, उनके संपर्क में तो मुझे बचपन से ही रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका मैंने ब्रजभाषा के लिए जीवन समर्पित कर दिया है, ये तो ठीक वो कह रहे हैं, लेकिन वो संस्कृत के उतने ही विद्वान हैं जितने ब्रजभाषा के। उनको पुराणों का, वेद वेदांगों का कितना गहनतम अध्ययन है, और शोध के क्षेत्र में वो कितनी सामग्री अपने जुटाए रखते हैं, चलते फिरते एक कार्य करते रहते हैं, और ये शोधकर्ताओं के लिए बहुत ही निधि है। अच्छा, उनके ग्रंथ का भी आज विमोचन हुआ है, वो भी राधा से संबंधित है, इसलिए वो अत्यंत मेरे हृदय के और श्रद्धा के पास। मैं सुना दोनों अपने अपने क्षेत्र में जिस कार्य करने वालों के लिए अत्यंत प्रशंसा करता हूँ, और आशा करता हूँ कि ये अपनी दिशा में और बढ़े। विशेष रूप से आज विचार गोष्ठी का विषय रखा गया है श्रीमद् भागवत में राधा तत्व। ये विषय जितने दर्शन का क्षेत्र है या भक्ति का क्षेत्र है, इसका बड़ा गूढ़ विषय है। यहाँ हमारे परम विद्वान पूज्य गोस्वामी जी विराजमान है, जो नित्य प्रति इसी में तन्मय रहते हैं। मुझको तो ऐसा हुआ कि मैंने दर्शन के 5-4 विषय जो मुख्य विषय हैं, शंकर वेदांत का अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वित वेदाद्वैत, इस मैंने सिद्धांत विषय को पी एच डी का विषय बनाया था, इसलिए मुझे 5 विषय में आचार्य बात करनी पड़ी थी वेदांत के। मैं सोचता हूँ कितना कठिनाई होती है सहनतम विषयों का अध्ययन करने के लिए। वैसे आज भी हिंदी और संस्कृत में बहुत ही शोध के कार्य हो रहे हैं, और राधा कृष्ण में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बंगला साहित्य में इसके संबंध में बहुत लिखा गया है, विवेचन हो रहा। सिर्फ मेरा एक विशेष निवेदन है कि हम शोधकर्ता इस प्रकार की दूसरी त्रुटियाँ कर डालते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है सकाशाना, भक्ति का जो क्षेत्र है वो तर्क से कभी नहीं आका जाता। भक्ति का क्षेत्र तो एक गुण विषय है, भावना का विषय है, उसमें दो और दो चार नहीं होते, वहाँ वैज्ञानिकता नहीं लाई जाती, और जहाँ तक राम तत्व है, सीता तत्व है, कृष्ण तत्व है, राधा तत्व है, ये तो ऐसे मार्मिक तत्व हैं, इनके चेहरे को थोड़ा सा शोध नहीं करनी चाहिए, किंतु ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, उनको हमें रखने की आवश्यकता है। वो अपार जो गहनतम ग्रंथ हैं उनके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है सामग्री, और आज डॉक्टर शब्द जो लग जाता है उसको देखते हुए एक बार आवश्यकता पड़ी। विश्वविद्यालय में भी एक मरमज विद्वान है आज भी डॉक्टर चंद्रलाल परासुर, उनको मैं गाइड बना रहा था, दो वर्ष का एमए का मौका, वहाँ एक लड़का आए, वो कह रहे हैं कि सात साल का टीचर उसने नहीं कैसे बन सकते, तो कहने का मतलब वहाँ पर एक विद्वान थे बनारस के यूनिवर्सिटी के, उनका तुम्हारे सामने पॉइंट लिया जाते कभी उनको सात साल का एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको गाइड बना नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कॉलेजों में आप कार्य कर लीजिए, अध्यापन कर लीजिए, विशेष ज्ञान प्राप्त करें, किंतु कुछ इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो मौलिक चिंतन अध्ययन करते हैं, वो विश्वविद्यालय जैसी जगह सुगढ़ होता है, और उन ग्रंथों में आधार पर ये राधा तत्व का क्या विवेचन किया गया विद्वानों ने, उस संबंध में थोड़ा सा मैं ये निर्धार करूँ। हम लोग हर दिशा में ये बातें हैं, राधा तत्व तो इस प्रकार का एक तत्व है जिसके विषय में विचार करना बहुत आवश्यक है। श्रीमद भागवत को हम राधा के संबंध में लेते हैं और अन्य पुराणों को लेते हैं, कुछ गुत्थियाँ राधा के संबंध में हैं, उनका सुलझाना आवश्यक भी है और अधिकांश जो श्रीमद भागवत के द्वारा को जानते हैं। दर्शन के भक्ति के क्षेत्र में हमारे नाम और नामी दो शब्द चलते हैं, तो उन शब्दों को लेकर के जितने मर्ग विद्वान हुए, कालिदास भी हुए, उन्होंने जो पहले लिखा है उसमें भागवत काव्य संस्कृत करो, भागवत का संपत्ति जगत शिखर बंदे पार्वती पढ़े, उनका तात्पर्य है शिशु का कहने का कि वाणी में ही अर्थ रहता है, शब्द में ही अर्थ रहता है। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में जितनी उपासना की जाती है उसमें नाम की उपासना की जाती है, नाम चाहे वो गुणवाचक नाम है या कर्म वाचक, इसी दृष्टि से किसी भी नाम को ले लीजिए, राधा नाम को लीजिए, कृष्ण नाम को लीजिए, राम को लीजिए, सब में नाम की उपासना, नाम के साथ में नाम ही उसमें अंतर्निहित रहता है, क्योंकि रस के साथ में भाव रहता है तो शब्द के साथ अर्थ रहता है, तो नाम में स्वनामी है, यदि नामी का ध्यान विशेष रूप से होता तो नाम का उच्चारण करना ही लाभदायक नहीं होगा। आप देखेंगे छोटा सा यही है कि राम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा और कृष्ण केशव पाई, ये थोड़ा सा एक ही छोटा सा श्लोक है, इसमें केशव के साथ में कृष्ण जोड़ दिया, राम के साथ राघव जोड़ दिया, राम को बताया गया है कौन सा राम जो राघव है रघुवंश से संबंधित है, कृष्ण कौन सा जो केशव कौन सा जो कृष्ण से संबंधित है, तो देखिए इन शब्दों में इनका कितना गुरु भाव है, राम में रमनते योग योगी रमन करें वो राम तक, उस राम तक जो जन संसार या रघुवंश में जन्म लेने वाले राम, उधर ही इसी दृष्टि से देखिए कि कृष्ण कौन से ये केशव। हाँ अभी राजेश श्याम जी ने बताया थोड़ा सा हल्का सा जल्दी जल्दी खराब कर दिया जाए तो मैं राधा तत्व को विशेष रूप से बताऊंगा। राधा तत्व में श्रीमद भागवत में एक ही कथन है, अनिया राजतुंड भगवान हरि, श्रीमद भागवत में राधा नाम कभी नहीं आया, श्रीमद भागवत में तो गोपी का नाम आया है जो आराधना करने वाली थी। अब कितनी गोपियां हैं, गोपश्री प्रवेश की वजह से गोपाल श्री रमन अनेक गोपियों में एक विश्वकुल प्रधान गोपी थी जो आराधना करती थी, इसलिए इतना नाम तो श्रीमद भागवत में आया, और उपराध वगैरह में आगे चलकर राधा नाम ही आया, राधा के विवाह के संबंध में जो पाठ्यक्रम वगैरह की है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि राधा क्या है, राधा भगवान श्री कृष्ण की एक शक्ति, भगवान शक्तिमान है, शक्तिमान ने एक शक्ति वास करती है जिसे कि हम राधा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण ने इसी प्रकार से शक्ति है। अब प्रश्न पैदा होता है कि एक अद्वैत तत्व, एक किसी प्रकार से अद्वैत तत्व वैश्य के रूप में कैसे प्रकट होता है भगवान अपनी लीला के रूप में, उस अपनी दूसरी शक्ति का एक आनंद लेना चाहते हैं, लीला स्वादन करना चाहते हैं, तो वो अद्वैत अद्वैत द्वैत उसमें सेपरेट हो जाता है। वो होता कहाँ है? वैसे देखा जाए हमारे यहाँ पर ये कहा गया है, एक तो किसी प्रकार से भगवान की प्रकट लीला चलती है, एक भगवान की प्रकट लीला चलती है। अप्रेत लीला जो है वो गोलोक धाम में चलती है, तो अप्रेत लीला वाला गोलोक धाम है वही प्रकट लीला वाला वृंदावन कहलाता है, तो वो अप्रेत वृंदावन कहलाता है जिसे हम गोलोक धाम कहते हैं। तो वो हमारा एक तत्व जो है, जब किसी प्रकार से लीला को करने की चेष्टा करता है तो कृष्ण और राधा के रूप में अपराध है। इसमें क्या है, कृष्ण भूभाव के संसार से निवृत्ति कराने वाला पक्ष है, केवल अपनी अहमति की शक्ति किसी राधा को अपने पास न रखता, इस प्रकार का पक्ष। और वो संसार में अपना किसी तरह से उस शक्ति को प्रेरित करके आजादी शक्ति है उसको प्रेरित करने के लिए यहाँ पर संसार होता है। और विशेष रूप से देखा जाए वो शक्ति भी क्या काम करती है, शक्ति के तीन चार क्षेत्र, वो राधा ब्रज बिहारी श्री कृष्ण के साथ निवास करती है, वही राधा वृंदावन बिहारी कृष्ण के साथ रहती है, वही राधा कुंज बिहारी कृष्ण के साथ रहती है, वही राधा निकुंज बिहारी कृष्ण के साथ रहती है। तो वो राधा का अपने अपने स्थान पर इस प्रकार का सुन, ब्रज बिहारी कृष्ण के साथ में सारी गोपियां रहती हूँ, मैं एक राधा भी उसके साथ में, जहाँ पटना में आगे कृष्ण आएंगे वहाँ पर युधि सदियों के साथ में जी राधिका जी आएंगे, उससे आगे थोड़ा सूक्ष्म रूप होता चला जाता है, जहाँ कुंज बिहारी कृष्ण का स्वरूप आएगा वहाँ और सूक्ष्म स्वरूप होगा, वहाँ उनके साथ में राधिका जी के साथ में कुछ सखियाँ होंगी जिनको मंजरी शब्द से उद्घोषित किया जाता है। लता या वृक्ष में कोई मंजरी होती है उसका सूक्ष्म स्वरूप होता है, और उनके साथ में कुछ सेवा भाव की आवश्यकता पड़ती है राधिका जी के लिए, तो सेवा वैसी सेवा नहीं है संसार में होती है, वात्सल्य भाव की सेवा होती है, दास्य भाव की सेवा होती है, सख्य भाव की सेवा होती है, सभी प्रकार की सेवा करने वाली राधिका जी के साथ मंजरी होती है जिनको हम किंकरी कहते हैं। इस प्रकार से ब्रज के क्षेत्र में रस्सी पात्रा में शांत है, दास है, सख्य बात है, अंतिम जो चरम सीमा का जो रस है वो माधुर होता है, और माधुर के जो मुख्य पात्र हैं रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण महाभारत की राधिका, उनका भी किसी प्रकार से उपासना का क्रम है, मुख्य रूप को ग्रहण करने वाली राधिका जी है इन सबों के साथ।
कंठा से तो प्रत्येक का सुनिए, लेकिन मुझे एक ऐसा प्रयोग है कि स्पॉन्डलाइज की थोड़ी तकलीफ कभी कभी मुझे बैठने में बड़ा विवश कर देती है, और मैं बहुत शारीरिक असुविधा अनुभव करता हूँ। जितनी देर संभव होगा मैं अपने कर्म पावन करने का अवश्य प्रयास करूँगा, लेकिन अगर विवशता हो गई तो क्षमा याचना करनी पड़ेगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 जहाँ उचित है वहाँ बहुत दुर्गम है, दुरूह है, विद्वानों का ध्यान किशोर आकृष्ट करने की अपेक्षा नहीं है, वो गुरु से ही अवगत हैं। श्रीमद् भागवत के ऊपर आज 110,000 ग्रंथ प्राप्त, अगर किसी प्राचीन जिसकी बहुत से प्रतिमा भारत में उपलब्ध नहीं, अब जर्मन में जाकर के बर्लिन लाइब्रेरी जैसी भूलराज की गीता, वासुदेव की गीता, इसलिए 5-7 मिनट से ज्यादा यहाँ बोलने का औचित्य नहीं है और 5-4 मिनट में किसी विषय को समझ लेना बहुत सरल भी नहीं है, संभव कुछ बोलना है इसीलिए तो साहस कर रहे हैं। क्या बात है, परंपरा से श्रीमद् भागवत के 7 अध्याय की परंपरा से भागवत के 7 अध्याय में रहते हैं और उसके विषय में जो कुछ जानते हैं एक बात जानते हैं और वो बड़ा आनंद देती है कि न जाने कितने जन्म और लेने पड़ेंगे जब भागवत के किसी अंश को जानने का सौभाग्य प्राप्त हो। भागवत के प्रत्येक अध्याय में सुस्पष्ट है कि ये परमहंस संहिता पुराण या महापुराण या काव्य प्रबंध, अरे भाई तो कैसे आप करो यह सब तो बौद्धिक परितोष और बौद्धिक परिवेश में विविध आधुनिक दृष्टिकोणों को लेकर के, आक्षेपों को लेकर के, आलोचनाओं को लेकर के, अन्य लोगों की आशंकाओं से प्रभावित होकर के, अपनी समाधि को छोड़ करके बहिर्प्रदेश में प्रवेश करके निजोन्मेष को अवरोध करना पड़ता है। वास्तव में तो ये परमहंसों के समाधिवेत्ताओं के तत्वज्ञों के सर्व विषय प्रपंच से और सामाजिकताओं व्यावहारिकताओं से निवृत्त महान भावों के समाज स्वादन का ऐसा सदग्रंथ है जिसके 7 अध्याय के उपरांत किसी प्रकार की ग्रंथि का अवशिष्ट रहना संभव नहीं है। यदि सदगुरु के पाद पद्मों में प्रणत होकर के उसने प्रसन्नता पूर्वक उस परिवेश में प्रवेश करके 7 अध्याय का मंगल सुयोग लाभ किया, अपने तर्क से और अपनी बुद्धि के परिमाण से अपने संस्कारों में अपने सदाचार और अपने प्रकार के प्रतिबंधों में रह करके मुक्त प्राण होकर के भागवत के विषय में सुनना समझना कुछ कहना ये संभव नहीं है। हमारे विद्वान लोग परिचित होंगे, हमारे बाबा एक सब बालक को बाहर ले जाए, बाबा से मतलब सार्वभौम से दक्षिणाथ जी आचार्य न्याय रत्न करके श्री दामोदर शास्त्री कि जब भागवत की कोई बात आती थी तो वे उठ करके खड़े हो जाते थे, केवल प्रणाम करते थे और इतना कहते थे मेरा इस विषय में प्रवेश नहीं और इस विषय में गर्व नहीं और अनधिकारी को उसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, अपात्र को उसका श्रवण नहीं करना चाहिए। उनके बड़े भाई श्री बनवाली लाल गोस्वामी जी थे, केवल ब्रजमंडल में चक्रवर्ती टीका को पढ़ाने वाला कोई विद्वान नहीं है, उन्हीं के श्रीमुख से हमने चक्रवर्ती के आश्रम में भागवत का पाठ किया। एक बात जो प्रसंग के सर्वथा अनुकूल है कि भागवत ही श्री राधा, बिना श्री राधा के स्वरूप स्वभाव और औपनिषदक तत्व परिवेश के संपूर्ण आत्मास्वादन और महदमुख निश्चित उस रसकुंज के संसेवन और संसाधना के अभाव में जैसे राधा तत्व स्वयं निरूढ़तम है, भागवत तत्व भी महान अरण्य है, महान अरणव है जिसमें साधारण नौका को, बुद्धि की नौका को लेकर के और साधारण कमजोर पतवार को लेकर के, आकंपित आस्था को लेकर के और स्वल्प स्वाध्याय को लेकर के प्रवेश करना एक दुस्साहस मात्र है। श्री राधा पर तत्व केवल जैसे कुलवधू को सड़क पर खड़ी करके और बड़े बड़े कवियों से और रसिकों से और भावुकों से, कलाकारों से, नायक नायिका परिभेद निष्णात पुरुषों से उसकी नापतोल और समीक्षा करने के लिए बात कही जाए तो कविता बन सकती होगी, निबंध बन सकते होंगे, उसके आनक्षिक वर्णन की कुछ उदात्त भूमिकाएं संभावित हो सकती होंगी, लेकिन कुलौचित्य नहीं होगा, परंपरा संसिद्ध नहीं होगी और मर्यादा का परिपूर्ण परिपाक नहीं होगा। उसी प्रकार से किन्हीं छोटे विषयों को लेकर के कोटि कोटि महानुभाव श्री श्री भगवान वल्लभ, श्रीमद रूप श्री सनातन, रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट, विजयध्वज वीर राघव मधुसूदन सूरीपाद और दूसरे दूसरे श्री चक्रवर्ती पाद, इन सब लोगों ने डूब करके सूखे पत्र खा करके गिरिराज की गुफाओं में रह करके, हमारे श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी एक छोटी सी कुटीर में रहते थे, उद्धृति के लिए कोई ग्रंथ उनके पास नहीं था, कोई लाइब्रेरी नहीं थी, केवल किशोरी के ध्यान से उन्होंने अपने हरिभक्ति विलास में और श्री उप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में, भक्ति रसामृत सिंधु में और कविकर्ण पूर्ण अलंकार कौस्तुभ में जिन हजारों हजारों ग्रंथों की उद्धृतियां दे करके, राधा माधव महोत्सव जीव गोस्वामी का राधा पर तत्व पर उत्कृष्ट ग्रंथ है और श्री विठल प्रभु का श्रृंगार रसमंडन और महाराज हमारे ये मित्र हैं बालकपन से, वैसे अवस्था में कम है लेकिन भागवत की अंत आस्था में हम समवय हैं, परंतु इन सब ग्रंथों के मर्म में जाकर के केवल इतना ही कही जाए कि मिश्री का लेला मेज पर रख करके और तरह तरह के पैमानों को लेकर के उसकी नाप तोल का प्रयास वैसा ही होगा कि सारी बेला व्यतीत हो जाएगी, रसबिंदु साबित नहीं होगा, भागवत के इन तत्वों को आलोचना और सामाजिकताओं के क्षेत्र में नंगा करके नखसीटा जाए अपितु रसिकों के, भावुकों के, उपासकों के परिमंडल में उनके अश्रुल नेत्रों से रोमांचित गात से समस्त रसधारा की मंगल कुंडली के सरसी में मकरंद सौरभित होकर के इस नाम सौभाग्य प्राप्त किया। और दूसरी बात अपनी असमर्थता कह दूं,
प्रथम सर्वावतार मूलम रसात्मक श्री केशव प्रणम्य तदंते श्री भक्तवेदांत नारायण स्वामिना आदरणीया अनल्पादरणीया श्री वृंदावनस्थ युगल स्वरूप रस रसिका श्री अतुल कृष्ण गोस्वामिनः, अन्येपि श्रीमद् भागवत तत्व आराधकाः, सर्वान् लोकान् हिंदी भाषायां प्रस्तुत विषय अवलम्ब्य किंचित् अनुज्ञेयते। बड़े सौभाग्य का विषय है हमारे श्री अतुल कृष्ण जी गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि यदि मिस्री का डेरा रख दिया जाए और कहा जाए साहब इसकी मधुरिमा पर प्रकट करिए, जरा विचार करें आप, मिस्री में कहां मधुरिमा नहीं है, मिस्री के डेरे को रखकर उसके माधुर्य पर प्रकाश डालें। उसी प्रकार मेरी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण तत्व और राधा तत्व ये दो तत्व नहीं है, तत्व कोई कहता है तक्ष भाव तत्व, हम कहेंगे तयोर भाव तत्व। सच साच इतित्व, सच श्री कृष्ण, साच श्री राधा, सच